राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा। तो कार्तिक दामोदर मास का आज 14वें कल पूर्णिमा कार्तिक मास समाप्ति की ओर जा रहा है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधार। तो इस साल का कार्तिक का महीना अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। भाग्यशाली हैं इस साल इस महीने में जिन्होंने हरि कथा हरि कीर्तन किया, कथा सुनी, कथा किया, भगवान का दर्शन किया, दीप दर्शन किया। एक साल के लिए भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान हरे कृष्ण हरे राम संस्था की ओर से विश्वभर में कार्तिक महीने में दिवाली हर रोज होती है, हर रोज दीप भगवान को अर्पण होता है। और आज भागे से ओजस्वी माता जी ने अपने घर पे और संजीव प्रभु उनके पुत्र घर में दामोदर अष्टक का पाठ और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, गौरारती और श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया है। बहुत बहुत इनको धन्यवाद करते हैं। यहाँ एक श्लोक भगवद गीता का हमारे सामने खुला है। वेदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, इसका मतलब ये सब काम करने चाहिए। आज 18वें अध्याय भगवान 18वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्यजेम, ये तीन कर्म कभी छोड़ने नहीं चाहिए। और यहां कहते हैं ये कर्म जो भी करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, अतेति यति सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है और प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलता है उसको वो सब फल मिलते हैं जो वेद यज्ञ तप दान से मिलते हैं, उसको ये करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ जो अभी हम हरे कृष्ण कीर्तन यहां कर रहे हैं इसका फल वेद के पाठ के बराबर नहीं, वेद के पाठ दान पुण्य यज्ञ ये सब करो उसका जो फल मिलता है उन सब के फल के समान केवल एक बार भगवान का नाम मुख से लेना है इसका फल है। गौकोटि दानम ग्रणे च काशी भगवान विश्वनाथ शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है काशी में, बनारस गंगा जी के तट के ऊपर है। उधर कोई आदमी दान करे, क्या दान करे, गौ कोटी, कोटी कहते हैं करोड़ को, करोड़ का मतलब 100 मिलियन, इतनी कोई गाय दान करे, गौ कोटि दानम ग्रहणे च काशी, कब करे, ग्रहण के दिन करे। ग्रहण के दिन जो दान किया जाता है वो ज्यादा फल देता है। यहां आपके यहां ग्रहण मनाते हैं कभी, ग्रहण को क्या करते हैं, पुराने जमाने में जब एक्लिप्स होता था, ग्रहण होता था, लोग स्नान करने जाते थे और स्नान करके वापस आके लोगों को दान देते थे, घर के बाहर बैठते थे और जहां जो आए उसको अन्न दान किया करते थे। ये बहुत पुरानी परंपराएं थी। तो ग्रहण के दिन दान देना बहुत बड़ा फल प्रदान करता है। गोकोट इदानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास। अगर कोई आदमी प्रयाग, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, प्रयाग जहां गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, उसको प्रयागराज कहते हैं। राज का मतलब सब तीर्थों का राजा। वहां बैठकर कोई कल्पवास करे, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा होता है। इतनी बड़ी तपस्या कोई करे उधर जाके बैठे। वैसे मान्यता यह है कि जनवरी के महीने में, भारत में बहुत ठंडी होती है जनवरी में, ऐसे जीरो टेम्परेचर 1, 2, 3, 0 -1 इतना होता है। और उस वक्त अगर कोई एक महीना जहां प्रयागराज कभी जाएंगे तो यहां से गंगा जी आती है, वो सफेद रंग की है, धौला रंग है उसका, व्हाइट। यहां से जमुना आती है वो सांवले रंग की है, ब्लू है। दोनों मिलती हैं, दोनों जगह जैसे मिलती हैं तो दोनों रंग अलग दिखते हैं, दोनों को मिलते हुए दिखते हैं, टू डिफरेंट कलर मिक्सिंग टुगेदर वो दिखता है। और जमुना वहां बहुत भरी हुई है और गंगा वहां छोटा सा जो आता है, और गंगा का जो जो ब्रेथ है वो बहुत बड़ी, 1 किलोमीटर से ज्यादा है, तो खाली जगह होती है गंगा में, रेती होती है। उधर लोग टेंट लगा के एक महीना रहते हैं और रोज सुबह सवेरे जनवरी के महीने में 0 डिग्री टेम्परेचर ठंडी में ठटकते गंगा में स्नान करते हैं। और एक महीना जब स्नान करते हैं जनवरी में, उसको बोलते हैं कल्पवास का फल मिलता है, ब्रह्मा जी के एक दिन जितनी तपस्या हो गई। दो बार हमने जनवरी के अंदर कुंभ मेला के समय उधर रहकर सेवा किया है भक्तों की। और प्रभुपाद जी बहुत 72 में शायद दो बार कुंभ मेले में विशेष रूप जाके वहां टेंट के अंदर रहे थे। और प्रभुपाद जी उससे पहले प्रयागराज में अपनी दवाओं के काम से भी रहते थे, तो उनको मालूम था ये तीर्थ कितना महत्वपूर्ण है। तो वहां अभी भी एक महीना कोई रह जाए जनवरी में, बहुत ठंडी होती है, कुछ नहीं दिखता, सन सैंड, ऊपर सुबह सूरज दिखता है, नीचे सैंड है, सन सैंड बस, और कुछ भी नहीं, धूली में रहना पड़ता है। उधर ही टेम्पररी बाथरूम बनाते हैं, पाइपलाइनें बनाते हैं और बड़े बड़े स्टील की प्लेट रखते हैं ताकि रोड बनते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट चलती है। कुंभ मेले में 20-25 लाख लोग उधर, एक पूरा गांव बनता है, एक पूरा विलेज बनता है। आज जितना आपके आइलैंड सारे का 1.2 मिलियन है, इससे ज्यादा लोग वहां सिर्फ कुंभ मेले में आते हैं और रहते हैं। और उन सबका भोजन, इतने लोगों का भंडारा चलता है, 5,000 लोग तो हम रोज प्रसाद अपनी इस्कान की तरफ से खिलाते थे बिठा के लोगों को। और वहां ब्रिक और सीमट इसका बड़ा टांकी बनाते हैं, जैसे कमरा है इतना, और आज सारी हलवा बना के वो टांकी भर के रखते हैं, हलवे की टैंकी भर के रखते हैं। कैसी, कौन सी टांकी? ब्रिक और सीमेंट की टांकी है, वो हलवे की भर के रखते हैं। इतना बड़े बर्तन कहां से लाए? तो इतने लोगों को हलवा जो कब देना है, रात सारी पकाते रहते हैं, भरते रहते हैं और फिर बांटते रहते हैं। कभी आपको भगवान ऐसा मौका दे तो एक बार कुंभ मेला जाके वहां देखना। अब आएगा, 2007 में हम वहां थे, अर्धकुंभ था, 7 और 6 13 में आएगा, 13 जनवरी, 3 साल के बाद आएगा। उससे पहले अभी आने वाला हरिद्वार अभी गया है, तो इसके बाद अभी आने वाला है प्रयागराज का। देखो किसी का भाग है तो जाना वहां। तो ये एक आदमी कल्पवास करे, ये बड़े से बड़ी तपस्या है। कुछ लोग प्रयाग के उधर उसी गांव के रहने वाले लोग भी एक महीना वहां आके टेंट में रहते हैं, अपनी रोटी पकाते हैं, भोजन अपना पकाते हैं, रोज स्नान करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, बस। बहुत बड़ी तपस्या है। ए कोई तपस्या कर ले, काशी में कोटी गाय दे दे, 100 मिलियन गाय दान कर दे, काउस प्रयाग में एक साल एक कल्प तक वास करे, तपस्या करे, गौकोटि दानम ग्रहणे च काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास यज्ञ स्वर्णम मेनु मेरु दानम। और कोई यज्ञ करे और यज्ञ के अंदर मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत है, सोने का बना है, पक्का सॉलिड सोने का पर्वत है, गोल्ड का बना वो पर्वत है, वो कोई दान दे दे, गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, ये सब इतने बड़े काम केवल गोविंद के नाम के उच्चारण के बराबर नहीं है। गोविंद नाम नाम सुमरणे न तुल्य, भगवान कृष्ण के गोविंद के नाम के जो उच्चारण करता है उसके बराबर ये सब नहीं है। इतना बड़ा दान दे, इतनी बड़ी तपस्या करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, सोने का दान पर्वत कर दे, फिर भी गोविंद के नाम लेने के बराबर नहीं है। तो ये श्लोक आठवां अध्याय भगवद गीता का अंतिम श्लोक है कि कुछ लोग योग के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कुछ तप करके जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त केवल हरे कृष्ण जपेगा तो उसको वो सब फल मिलेंगे जो इन सब कार्य से मिलते हैं, लेकिन भगवान मिलेगा, जो उनसे उन कार्यों में मिले न मिले उसका कोई भरोसा नहीं है। देयर इज नो गारंटी कि यज्ञ करने से भगवान मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं। दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, उधर सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, शंकर जी ने यक्ष का गला ही काट दिया, तो यज्ञ में कोई जरूर नहीं है कि सदा के लिए फल मिल जाए। लेकिन भगवान के नाम लेने वाला अजामिल कितना पापी था, लेकिन सारे पाप एक मिनट में धुल गए। तो इसलिए ये श्लोक हमको कहते हैं कैसे भी भगवान का नाम लेने का नेम बनना चाहिए, कैसे भी अपने जीवन में रोज भगवान के नाम जपने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। जितना पैसे का नोट गिन के अंदर रखने का शौक होता है ना, गिन के एक दो तीन चार ऐसे भगवान का नाम अच्छी तरह से रोज जपने का गिनने का नियम बना लेना चाहिए। ये धन है, ये भगवान का नाम जपना बहुत बड़ा धन है, ये धन इकट्ठा करना चाहिए। वो धन बेकार है, वो धन ना किसी काम का नहीं है, कागज का टुकड़ा है, आपके जेब से निकला और किसी बाहर सब्जी वाले को दे दिया, आपसे गया, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जितना दूसरों को देगा इतना बढ़ेगा, ये धन जितना दूसरे को बांटेगा उतना बढ़ेगा, ये धन ऐसा है बांटने से बढ़ता है, वो धन देने से कम होता है और ये धन दूसरों को देने से बढ़ता है। तो इस धन को निश्चित रूप से इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम आदमी कब जपेगा, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम नामी अभिन्न, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, तो कृष्ण को नाम के रूप में ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। कृष्ण कथा से कृष्ण से हमारी आसक्ति होगी, कृष्ण में हमारा मन लगने लगेगा, अटैचमेंट होगी और हम चाहेंगे कृष्ण हमारे को प्राप्त हो। देखने से नहीं, आंखों से देखने से भगवान से प्रेम नहीं होता है, भगवान के बारे में कानों से सुनने से भगवान से प्रेम होता है। भगवान को देखने का साधन कान है, आंख नहीं है, कान के द्वारा भगवान को देखा जाता है, भगवान की कथा सुनने के द्वारा। तो आज की कथा जो है वो श्रवण के द्वारा कैसे रुक्मणी ने भगवान को प्राप्त करने का संकल्प किया, ये कथा शुरू करेंगे। लेकिन द्वारका चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में 11.5 साल तक रहे, बाल लीलाएं की और पोंगल लीला की, किशोर लीला की, बड़ा अच्छा भगवान का वहां समय बीता। आप लोग थोड़े आगे आ जाएं, पीछे लोग आएंगे वो बैठ सकते हैं, आप लोग आगे आ जाइए, जो अंदर बैठे हैं वो आगे आ जाए ताकि पीछे जगह रहेगी। साढ़े ग्यारह साल के बाद भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ गए और 15-17 साल तक मथुरा में रहे। भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं केवल वृंदावन में ही दर्शन होता है, 15 कलाएं मथुरा में रहती है और द्वारका जाते हुए 14 कलाएं रह जाती। तो परसों किसके घर में सत्संग कर रहे थे आपने, संत सतीश और सीता माता जी के घर में, तब हमने आपसे कहा था वहां भगवान श्री कृष्ण को हम वृंदावन से मथुरा लाए थे और मथुरा से काल यवन को मरवा के जरासंध से भागकर भगवान रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, रणछोड़ गए और द्वारका में जाके पहुंच गए। द्वारका की नगरी समुद्र के बीच में विश्वकर्मा ने बनाई। किसने बनाई बेटा? आप लोग थोड़े आगे आओ ताकि वो जगह खाली हो जाए, पीछे लोगों को बैठना आसान हो। बच्चे लोग आगे आ जाओ, ए बच्चे लोग, ये जगह बहुत खाली है, इधर 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 ये बच्चे आगे आ जाओ बेटी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आनर्त देश कहते हैं जिसको हम द्वारका कहते हैं ना, इसका नाम है आनर्त देश। महाराज आनर्त सूर्यवंशी एक राजा हुए हैं, उसके पिताजी किसी कारण से उसको कहा कि तुम्हें राज में जगह नहीं दूंगा, क्योंकि उसने कहा कि भगवान सब का मालिक है, पूरी पृथ्वी भगवान की है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो भगवान से पृथ्वी ले लो। तो महाराज आनंद ने तपस्या की और भगवान विष्णु ने साक्षात वैकुंठ से 100 योजन की भूमि धरती के ऊपर नीचे उतारी। 100 योजन का मतलब 1600 माइल। इतनी धरती, वैकुंठ की धरती नीचे आई, उसका नाम हो गया आनर्त, महाराज के नाम से आनर्त देश। फिर जब वहां भगवान ने द्वार जब अपना समुद्र के अंदर विश्वकर्मा से बहुत सुंदर महल बनाए और स्वर्ग से सुधर्मा सभा को नीचे उतारा और सब देवताओं ने आके भगवान को गिफ्ट दिया, तो उस वक्त गोपियां वृंदावन में कह रही थी, मथुरा में तो भगवान रहते थे, हम तो समाचार मिलता रहता था कि क्या हो रहा है, मथुरा वृंदावन दूरी नहीं, अब तो कहां चलेगी इतने दूर, हम उनका पता कैसे लगेगा। भगवान उनकी इच्छा को समझ गए, उद्धव के साथ योग माया के द्वारा भगवान ने सब गोपियों को रात रात को वृंदावन से लाकर एक बहुत बड़े सुंदर महल के अंदर पहुंचा दिया। सुबह जैसे गोपियां उठी तो वो तो बेचारी गांव की थी, तो घर उनका घास का बना हुआ था, इतने बड़े महल के अंदर सुबह पूछती है द्वार कहां है, द्वार कहां है, दरवाजा कहां है, दरवाजा कहां है, तो द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है, तो उसका नाम हो गया द्वारका। तो गोपियों ने ये नाम उस स्थान को द्वारका दिया। पहले यह स्थान आनर्त देश और एक दूसरा भी इसका नाम है, बाद में आएगा कहीं तो बताएंगे, लेकिन आनर्त देश भागवत में लिखा है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं वहां आनर्त देश लिखा है शब्द। तो द्वारकापुरी में जब भगवान पहुंचे तो सब यदुवंशियों ने कहा अब तो हम सुरक्षित जगह में हैं, इतनी सेफ जगह है कि समुद्र के बीच में कोई कैसे आएगा। अब सबके मन में इच्छा हुई कि वसुदेव और देवकी कहते हैं कृष्ण का विवाह होना चाहिए, लेकिन बलराम जी पहले बड़े बेटे हैं तो छोटे का कैसे विवाह पहले करें, पहले बड़े के विवाह करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी देर में शरियाती महाराज सूर्यवंश का विवस्वत मनु का बेटा है उसका पोता उसके पास उसकी उसकी पोती का नाम था रेवती और वो अपनी बेटी को लेकर पिता ब्रह्मा जी से पूछने गया था कि मैं मेरी बेटी का विवाह किससे करूं। लेकिन उस वक्त ब्रह्मा जी कहीं गंधर्वों के गाने में बैठे थे तो उधर का आधा घंटा उनके टाइम लग गया। जब ब्रह्मा जी आए तो पूछा आप कैसे पधारे रेवत पुत्र। बोला ये मेरी बेटी रेवती विवाह के योग्य है, ये राजा हमने गिन के रखे थे, आप बताइए किसके साथ विवाह करें। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोला आधा घंटा गुजर गया, नीचे युग बीत गए, जिन राजाओं के आप नाम ले रहे वो तो रहे नहीं, उनके राज भी नहीं रहे, वो नाम ही नहीं उनका, खत्म हो गया, अब क्या करें। बोला अब ऐसे करो, इस वक्त द्वारका में वसुदेव नंदन बलराम जी है और रेवती नित्य उनकी प्रियसी, आप जाके उनसे उनका विवाह का प्रबंध करें। तो रेवत पुत्र अपनी पुत्री रेवती को लेकर द्वारका आया और बलराम जी के साथ उसके विवाह करने का प्रबंध हुआ। तो हम कहें द्वारका छोटा टुकड़ा नहीं है, आप समझे जिसका नाम अभी सिर्फ द्वारका, इतनी द्वारका नहीं है, द्वारका बहुत 1600 मील में है। तो द्वारका से एक जगह है उसको कहते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ जूनागढ़, उधर तीन पर्वत हैं, एक तो गढ़ गिरनार है, गिरनार उसको कहते हैं गिरनार पर्वत, उसके ऊपर दत्तात्रेय का बहुत बड़ा मंदिर है और हजारों स्टेप हैं, लोग जाते हैं चढ़ के उसके ऊपर, नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी स्टेप्स लोग चढ़ के ऊपर जाते हैं। और एक तरफ पर्वत है जिसके ऊपर बहुत सुंदर कृष्ण बलराम का मंदिर है, वहां बलराम जी का विवाह हुआ था, वहां रेवती को लाया गया था, तो बलराम जी के विवाह का स्थान वो पर्वत है, इसका पर्वत का नाम भी को याद आएगा। तीन पर्वतों के बीच में बहुत सुंदर सा नीचे तालाब है, तो ये भी बहुत दर्शन का सुंदर स्थान है, कभी द्वारका की यात्रा के अंतर्गत आता है, रेवत पर्वत, लेकिन रेवत पर्वत उसका नाम है कि रेवती का विवाह बलराम जी के साथ वहां हुआ। लेकिन रेवती थी सत्ययुग के जमाने की और तब रेवती का जो हाइट था वो 15-20 फुट होगा और बलराम जी तो द्वारपुर के लंबे थे, 8 फुट के तो थे, लेकिन रेवती तो बहुत लंबी थी और भी। अब क्या करना चाहिए, बलराम जी ने अपने हल को लेकर रेवती मैया की चोटी में यहां डाला और थोड़ा करके खींचा, बराबर से 1 इंच नीचे हुआ, वहां फिक्स कर दिया, फिर बराबर हो गए। ऐसे लिखा है, मैं क्या करूं। और हमने आपको कहा था कि भगवान रणछोड़ इसलिए भी बने, रणछोड़ के आए कि भगवान को मालूम था कि रुक्मणी का पत्र आने वाला है, देर नहीं होनी चाहिए उसमें। तो इसके बाद द्वारका वासियों की इच्छा थी कृष्ण का अब विवाह होना चाहिए। अब कृष्ण 25-28-30 साल के हो गए हैं, सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, एक ब्राह्मण प्रवेश करता है, ब्राह्मण को देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ के उसका स्वागत किया, जिस आसन पे भगवान बैठते हैं उसके ऊपर ब्राह्मण को बिठाया, कुशल मंगल पूछा, फिर वहां से ले जाकर अपने महल में ब्राह्मण की पूजा की, जैसे ब्राह्मण सुधामा आया था ऐसे भगवान ने उसकी पूजा की, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की पूजा करना, उसका चरण धोना आदि सेवा करना, फल फूल आदि अर्पण किया, फिर पूछा कि जहां से आप पधारे हैं विद्रभ देश से आए थे, कौन सा देश से आए थे, विद्रभ देश, ये जो अमरावती है मध्य महाराष्ट्र में, बॉम्बे से आगे जाएंगे एक जगह नाम है अमरावती, एक ट्रेन चलती है उसका नाम भी है विद्रभ एक्सप्रेस, अभी भी उसका नाम विद्रभ एक्सप्रेस है। तो यहां के महाराज भीष्मक महाराज वहां राज करते थे विदर्भ देश में, तो ब्राह्मण से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण, ब्राह्मणों का वहां अच्छी तरह से देखभाल होती है, उनका सम्मान होता है ना? आपके राज्य में महाराज ब्राह्मणों को ठीक तरह से देखते हैं ना? क्योंकि जिस राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है वो राज आगे चलेगा नहीं। प्रभुपाद ने लिखा है श्रीमद् भागवत में, छोटे बच्चों का, स्त्रियों का, ब्राह्मण का, बूढ़े बुजुर्गों का और गाय का जहां सम्मान नहीं है वो सभ्यता सर्व का नाश हो जाएगा, वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, वो सभ्यता नाश हो जाएगी। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण का इसलिए मान सम्मान करके सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो सबको रास्ता दिखाता है भगवान की तरफ जाने का, धर्म का, शिक्षा दीक्षा का कार्य करता है। वो नहीं रहेगा तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। स्त्री की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि पवित्रता की रक्षा होगी, अच्छे बालक पैदा होंगे तभी आगे भविष्य में देश का उन्नति होगी। और बालक की इसलिए सुरक्षा करनी चाहिए कि उसको शिक्षा ठीक मिलनी चाहिए, वो भविष्य का पुरुष है ना? चाइल्ड इज ए क्या कहते हैं, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ द फ्यूचर, आगे चल के वो पिता बनेगा। और गाय की इसलिए रक्षा करनी चाहिए कि गाय माँ है जो हमको दूध प्राप्त देती है, उस दूध से हमारा बहुत जो हमारा दिमाग है हमारा वो भगवान के भक्ति में लगने के लिए योग्य बनता है। और बूढ़ों की इसलिए ठीक तरह से देखभाल करनी चाहिए ताकि वो वापस भगवत धाम जाएं, दुनिया में दुखी ना हो, ये पांच की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान पूछते हैं कि ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है, फिर पूछते हैं क्षत्रिय महाराज के राज में सब कुशल मंगल है? ब्राह्मण कहते नहीं, वहां ब्राह्मणों की रक्षा होती है और सब लोग सुखी हैं, गौ ब्राह्मण सब आनंद में हैं। तब भगवान श्री कृष्ण क्या पूछे, आपके आने का उद्देश्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, को ब्राह्मण कहता है, मैं संदेश लाया हूं, मेरे आने का उद्देश्य है कि मैं संदेश लाया हूं। महाराज भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा है, उसके पांच पुत्र हैं और एक बहुत सुंदर कन्या है। पांच पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है रुक्मी, वो श्री कृष्ण आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, ही इज एनवियस ऑफ यू। महाराज भीष्मक और चार भाइयों की इच्छा थी और रुक्मणी की इच्छा थी कि उसका विवाह आपके साथ हो, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना चाहता है और वो विवाह तय भी हो गया, उसकी तारीख भी तय हो गई है, डेट फिक्स हो गई, दिन बाकी तीन बचे हैं। रुक्मणी ने यह चिट्ठी आपके लिए दी है और संदेश भी लिखा है। और रुक्मणी कहती है, मैंने नारद आदि ऋषियों से आपकी कथा सुनी है, आपकी सुंदरता, आपकी वीरता और आपके वैभव की कथा सुनी है, और मैं अपने मन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। तो रुक्मणी ने देखा नहीं था, कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन केवल कथा सुनी थी। यही हम बात कर रहे थे, कथा सुनने से भगवान में मन लगता है और फिर आदमी भगवान को अपनाना चाहता है। रुक्मणी का वर्णन है, ब्राह्मण कहता है बहुत सुंदर है, सुशील है, रुचिर आनंद है, उसका चेहरा बहुत आनंद, बहुत रुचिर आनंद, आनंद कहते हैं चेहरे को, रुचिर कहता है जिसको आदमी देखा है, देखे तो देखता रहे। और फिर रुक्मणी लिखती है कि